आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण में आपका स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह। श्रोताओं, करीब 6 दशक तक देश की आंतरिक सुरक्षा के सामने बड़ी चुनौती रहे वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत ने इस वर्ष एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। आज देश का कोई भी जिला वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले की श्रेणी में नहीं है। देश में नक्सलवाद का प्रभाव लगभग पूरी तरह समाप्त हो चुका है। लेकिन नक्सलवाद की शुरुआत कैसे हुई, ये देश के कई हिस्सों तक कैसे फैला और फिर ऐसा क्या बदला कि भारत इस चुनौती से बाहर निकलने में सफल हुआ, साथ ही नक्सल मुक्त भारत की इस उपलब्धि के बाद आगे की राह और सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं, आज के विश्लेषण में हम इन्हीं विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नक्सलवाद का नाम सुनते ही हमारे मन में हिंसा, सुरक्षा बलों पर हमले और दूर दराज के जंगलों की तस्वीरें उभरती हैं। लेकिन संसद में नक्सलवाद पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऐसा पक्ष सामने रखा जो इस पूरी चुनौती की मानवीय कीमत को समझाता है। उन्होंने एक ऐसी आदिवासी बेटी का उल्लेख किया जो हिंसा और भय के माहौल के कारण 32 वर्ष की उम्र तक अपने हाथों में मेहंदी तक नहीं लगा सकी। उसने पहली बार मेहंदी आत्मसमर्पण करने के बाद पुनर्वास केंद्र में देखा और ये सिर्फ इकलौती घटना नहीं है। नक्सली हिंसा ने करीब 15,000 बच्चों का जीवन प्रभावित किया और हजारों परिवारों ने दशकों तक नक्सलवाद का दंश झेला। श्रोताओं, इस चुनौती की शुरुआत कैसे हुई और ये इतने बड़े क्षेत्र तक कैसे पहुंची, साथ ही भारत ने इस स्थिति को बदलने के लिए क्या रणनीति अपनाई, आइए जानते हैं इस विशेष रिपोर्ट में।
भारत में नक्सलवाद की शुरुआत वर्ष 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी गाँव से हुई। यहीं से शुरू हुए एक हिंसक आंदोलन ने धीरे धीरे देश के कई राज्यों में अपनी जड़ें जमा ली। समय के साथ ये केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं रहा बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन गया। माओवादी विचारधारा लोकतांत्रिक व्यवस्था के बजाय हिंसा और सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से सत्ता परिवर्तन में विश्वास रखती है। इस विचारधारा में बंदूक के दम पर व्यवस्था बदलने की बात कही जाती है। इनका ध्येय वाक्य था कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। इसी सोच के साथ अलग अलग माओवादी संगठनों ने कई इलाकों में अपनी गतिविधियां बढ़ाई। वर्ष 2004 में दो बड़े संगठनों के विलय के बाद कई राज्यों में नक्सली गतिविधियों में तेजी देखी गई। कई दूर दराज और वन क्षेत्रों में लंबे समय तक सड़क, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासन जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी रही। इन इलाकों में शासन की पहुंच सीमित थी। माओवादियों ने इसी स्थिति का फायदा उठाया और कई क्षेत्रों में उन्होंने सड़कों, स्कूलों और दूर संचार जैसी सुविधाओं को भी निशाना बनाया ताकि ये इलाके मुख्य धारा से कटे रहें। वर्ष 2010 के आसपास नक्सली हिंसा अपने चरम पर थी। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने इस चुनौती से निपटने के लिए समन्वित रणनीति पर काम शुरू किया। वर्ष 2015 में वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना लागू की गई। इस रणनीति में केवल सुरक्षा अभियानों पर ही नहीं बल्कि विकास कार्यों, स्थानीय समुदाय के अधिकारों, बेहतर प्रशासन और लोगों का विश्वास जीतने पर भी समान रूप से जोर दिया गया। इस समन्वित प्रयास का असर धीरे धीरे जमीन पर दिखाई देने लगा। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई, विकास कार्यों में तेजी आई और शासन की पहुंच उन क्षेत्रों तक बढ़ी जहां पहले ये बहुत सीमित थी। परिणाम स्वरूप वर्ष 2014 में जहां 126 जिले वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित थे, वहीं ये संख्या घटते घटते मार्च अप्रैल 2026 में शून्य हो गयी।
श्रोताओं, इस बदलाव के पीछे स्पष्ट राजनीतिक इच्छा शक्ति, केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय और जमीन पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस विषय पर आकाशवाणी रायपुर के संवाददाता विकल्प शुक्ला ने एंटी नक्सल ऑपरेशन के पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक राजेंद्र कुमार विज से विशेष बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
सबसे महत्वपूर्ण जो कारण लगता है मुझे वो है पॉलिटिकल विल। देखिए, एक कमिटमेंट के साथ एक स्टेटमेंट जारी हुई गृह मंत्री की ओर से और उसको पूरा करने के लिए जो स्टेप्स लेने थे वो लिए गए। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि पिछले 2 साल के अंदर करीब 100 से ज्यादा सिक्योरिटी कैंप्स स्थापित होना। देखिए, सिक्योरिटी कैंप्स पहले भी थे, बस्तर बहुत बड़ा इलाका है, तो वो जो सिक्योरिटी कैंप्स उन इलाकों में स्थापित हुए जहां सिक्योरिटी वैक्यूम था, वो अबूझमाड़ के अंदरूनी इलाके थे, साउथ और वेस्ट बस्तर के अंदरूनी इलाके थे, नीचे के इलाके थे। वहां पर जब तैनाती हुई तो माओवादी की बटालियन या बड़े फॉर्मेशन, उनके शेल्टर के स्थान, उनकी तकनीकी इकाइयां जो थी हथियार बनाने वाली, उनके काम जब डिस्टर्ब हुए, शेल्टर उनके जब डिस्टर्ब हुए, उनको मूव आउट करना पड़ा, तो ये दौर था जिसका ज्यादा असर पड़ा। तो पॉलिटिकल विल और उसके साथ सप्लीमेंट हुए रिसोर्सेज जो लगने थे, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार दोनों एक ही पेज पर थे, दोनों में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था और आगे बढ़ने में कोई देर नहीं लगी।
जमीनी स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में पुलिस बलों की क्षमता बढ़ाने की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस बारे में भी राजेंद्र कुमार विज ने अपने अनुभव साझा किए, आइए सुनते हैं।
मुझे याद है जब छत्तीसगढ़ बना था तब छत्तीसगढ़ का पुलिस बल 22-23 हजार था मात्र। आज अगर आप देखेंगे तो वो बढ़कर 80 हजार हो गया है। जो हमारी बटालियंस थी वो 7 थी, बढ़कर 22 हो गई हैं। थाने थे, कई गुना बढ़ गए हैं। तो ये जो पुलिस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है इसमें काफी समय लगता है। इवन जब मैं वहां पर आईजी पुलिस था बस्तर में, तब वहां इवैक्यूएशन के लिए हेलीकॉप्टर नहीं हुआ करता था। ये 2006-7-8 की बात, उस समय चरम सीमा पर था माओवाद की जो हिंसात्मक कार्रवाइयां थी। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ने में अलग अलग स्कीम्स केंद्र सरकार लाई, कुछ राज्य सरकार लाई, पुलिस स्टेशन का फोर्टिफिकेशन हुआ, उनकी पेरीमीटर सिक्योरिटी बढ़ी, टावर्स लगे, इंटेलिजेंस के लिए अलग एजेंसी बनाई गई, स्पेशल टास्क फोर्स बनाए गए। वो समय था बीच में डीआरजी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड का गठन हुआ 2015 में। उसके अलावा जो बस्तर फाइटर बल है वो 3000 करीब स्वीकृत हुआ, जिसमें सिपाही, हवलदार, थानेदार तक 2000 का पद जो है वो नए भर्ती हुए। तो लोकल लोगों के भर्ती होने से क्या होता है कि वो एरिया को जानते हैं, वो भाषा को जानते हैं, वो संस्कृति को जानते हैं, उनके कुछ रिश्तेदार नक्सली हैं और कुछ इस तरफ हैं। तो वो जो एडवांटेज पुलिस को मिला लोकल लोगों को भर्ती करने का, वो अभी पिछले सालों में कुछ मिला है।
श्रोताओं, किसी भी बड़ी चुनौती पर मिली सफलता को बनाए रखना उसे हासिल करने जितना महत्वपूर्ण होता है। आज जब देश का कोई भी जिला वामपंथ उग्रवाद प्रभावित नहीं माना जाता, तब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे की राह क्या होगी। जिन क्षेत्रों ने वर्षों तक हिंसा का दौर देखा, वहां अब शांति और विकास को कैसे मजबूत किया जा सकता है, आइए जानते हैं इस अगली रिपोर्ट में।
आज देश का कोई भी जिला अब वामपंथी उग्रवाद प्रभावित नहीं माना जाता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सरकार का काम पूरा हो गया है। अब चुनौती इस उपलब्धि को लंबे समय तक बनाए रखने की है, ताकि नक्सलवाद दोबारा सिर न उठा सके। इसी सोच के साथ सरकार ने 37 जिलों को लेगेसी एंड थ्रस्ट जिलों की श्रेणी में रखा है। ये जिले अब नक्सल प्रभावित नहीं हैं, लेकिन यहाँ कुछ समय तक सुरक्षा और विकास से जुड़े प्रयास जारी रखे जाएंगे। इसके अलावा एक जिले को डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में रखा गया है, जहाँ नक्सली हिंसा और उनका संगठन पूरी तरह समाप्त हो चुका है, लेकिन स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। अब ध्यान केवल सुरक्षा अभियानों पर नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करने पर है कि विकास का लाभ हर गांव और हर परिवार तक पहुंचे। सड़क, दूरसंचार, शिक्षा, कौशल विकास, बैंकिंग सेवाओं और सरकारी योजनाओं की पहुंच लगातार बढ़ाई जा रही है। साथ ही स्थानीय समुदायों के अधिकारों को मजबूत करने, पंचायतों की भूमिका बढ़ाने और आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस बदलाव की सबसे बड़ी तस्वीर उन सुरक्षा शिविरों में दिखाई देती है जिन्हें कभी नक्सली हिंसा से निपटने के लिए स्थापित किया गया था। अब ऐसे एक तिहाई सुरक्षा शिविरों को जन सुविधा केंद्रों में बदला जा रहा है। यहाँ स्थानीय लोगों को आजीविका, कौशल विकास, सरकारी योजनाओं की जानकारी, डिजिटल सेवाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं और खेल तथा सांस्कृतिक गतिविधियों जैसी कई सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। छत्तीसगढ़ के नेतानार में पहला जन सुविधा केंद्र शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है। इसके साथ ही जनजातीय युवाओं को देश के अलग अलग हिस्सों से जोड़ने के लिए ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम चलाया जा रहा है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
श्रोताओं, कभी नक्सलवाद की चुनौती को देश के एक बड़े भूभाग तक फैले तथा कथित रेड कॉरिडोर के रूप में देखा जाता था। एक समय तिरुपति से पशुपति तक इसके प्रभाव की चर्चा होती थी, लेकिन आज भारत का कोई भी जिला वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिले की श्रेणी में नहीं आता है। जिन क्षेत्रों ने दशकों तक हिंसा का दौर देखा, वहां अब शांति के साथ शिक्षा, रोजगार और बेहतर जीवन के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं, और यही नक्सल मुक्त भारत की सबसे बड़ी पहचान और सबसे बड़ी सफलता भी है। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारे सहयोगी अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक ललित।